हरे कृष्ण। तो पिछले दो दिनों में हमने उपदेशामृत का जो दूसरा श्लोक है इसके ऊपर चर्चा किया, जो भक्ति के मार्ग पे प्रतिकूल है, भक्ति का नाश कर देता है, ये छह चीजों का क्षय दोष शोधी। आचार्य वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वैष्णव की कृपा से कि ये छह दोष से हम दूर हो जाएंगे तो भक्ति में प्रगति करने में आसान होगा। फिर कहते हैं क्षय गुण देहो दासे, छह गुण मुझे हम लोगों को प्रदान कीजिए जो भगवान की भक्ति के प्रगति के लिए अनुकूल है, वो यहां वर्णन किया जा रहा है। श्लोक तीन मेरे पीछे आप मेरे बाद में उच्चारण कीजिए। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर् भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। अनुवाद, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। एक, उत्साही बने रहना। दो, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीन, धैर्यवान होना। चार, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आवश्यक आश्वासन करते हैं। तो ये छह चीज जो है, हरे कृष्ण, ये भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल बताया गया। थोड़ा कम है आवाज, थोड़ा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये छह चीज भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, और इसमें से अगर थोड़ा भी हम इसको समझकर अपनाएंगे अपने जीवन में तो हम बहुत जल्द ही प्रगति कर सकते हैं शुद्ध भक्ति की ओर। तो पहला है उत्साह। एक्चुअली किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में बिना उत्साह के हम लोग, अरे कृष्ण थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, बिना उत्साह के कोई भी कार्य में कोई व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। किसी भी कार्य का अगर प्राप्ति करना है, उद्देश्य प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उत्साह की बहुत जरूरी है। और अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हमको क्या है, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलना है, और हमारा यशस्वी होने का मतलब क्या है, इसी जीवन के अंत में हमको वापस भगवत धाम जाना है, तो अगर ये करना है तो उत्साह बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण, उत्साह बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी उत्साह का जो परिभाषा बहुत अच्छा से देते हैं, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एंथुजियाज्म। प्रयास, कोई भी प्रयास जो बुद्धिमता के साथ वो प्रयास करना और कृष्ण भावना भावित होकर, तो तीन चीज है। उत्साह का मतलब है प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बुद्धिमता के साथ और कृष्ण भावना भावित होकर। तो प्रयास बहुत जरूरी है। नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, बिना प्रयास के कोई कार्य की सफलता प्राप्त नहीं होगी। न मनोरथैः, चुपचाप अगर सपना देखता रहेगा बैठ के कि एक दिन मेरे को करोड़ कमाना है, उसके बाद एक अरब कमाना है और उसके बाद इतना फैक्ट्री खोलना है, दिन में कोई सपना देखता है, कोई रात को देखता है, तो सिर्फ सपना देखने से, न मनोरथैः, सिर्फ मन में सोचने से नहीं होगा। उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति, प्रयास करना बहुत जरूरी है। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, भले सिंह जो है शेर जंगल का राजा हो, राजा है इसका मतलब बोलेगा मैं मुंह खोल के सोते रहूंगा, अपने आप हिरण आके मेरे मुंह में गिरना चाहिए, नहीं, अरे उसको भी करना पड़ता है काम। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृग लोग अपने आपके राजा हैं, सोए हुए हैं, मुंह खोल के रखे हुए, चलो अंदर जाएंगे, नहीं। तो इस तरह से कोशिश बहुत जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। एक व्यक्ति से, एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि आपके यश का रहस्य क्या है, तो उन्होंने कहा 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन, 1% स्फूर्ति और 99% पसीना। मतलब पसीना करना, मतलब प्रयास करना बहुत जरूरी है। बिना उत्साह के प्रयास नहीं होगा और बिना प्रयास के यश की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं भक्ति का मतलब बस सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहना, सिर्फ भावना होनी चाहिए महाराज, लोगों का लगता है सिर्फ भावना, भक्ति मतलब भावना, बस भगवान सिर्फ हृदय की भावना देखते हैं। तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में बैठ के सोचते थे, सोच सकते थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी त्याचे, मैं बैठे बैठे रहूंगा, सोचते रहूंगा, अपने आप हो जाएगा। कहा 70 साल की उम्र में कितने उत्साह के साथ पूरे 14 बार विश्व में 12 साल के अंदर भ्रमण किए। तो बिना कोशिश, ये भक्ति है, भक्ति का मतलब सिर्फ भावुकता नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्विस, सेवा होनी चाहिए। बिना कोशिश के भक्ति जो है वो सिर्फ मुंह की बातें हो जाएगी बस। पर वो भक्ति जो है, और या वो प्रयास जो है, प्रयास बुद्धि के साथ, बुद्धिमता के साथ, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि लगाना जरूरी है। एक बार प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य गिरिराज स्वामी महाराज, जिन्होंने बंबई में पहले दिनों में बहुत ही तपस्या की, आज बंबई में हरे कृष्ण आंदोलन इतना बड़े पैमाने से प्रचार है, तो गिरिराज महाराज की कृपा से शुरुआत में उन्होंने बहुत तपस्या की, यहां तक कि गिरिराज महाराज को प्रभुपाद ने कहा बॉम्बे मीन्स गिरिराज, बॉम्बे मतलब गिरिराज, इतना उन्होंने तपस्या किया। शुरुआत में जब लोग समझते थे लोग CIA एजेंट्स है, पाश्चात्य से आए, कुछ नहीं जानते उस समय, तो वो एक बार बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम का इंतजाम किए, और इंतजाम करने के बाद जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो वो दिख नहीं रहे थे, कहीं जाके लेट गए थे, सो गए थे, थक गए थे वो। तो प्रभुपाद ने बाद में पूछा तो कहाँ थे प्रोग्राम के दौरान, बोले मैं जाके थक गया, बोले सो गया था, क्यों? बोले 5-6 दिन से लगातार एक छपक नींद भी नहीं सोया मैं, तो सब हो गया आपका प्रोचे शुरू हो गया, मैं जाके सो गया। और सही में अकेले ने सब कुछ इंतजाम किया, इसका माइक का, उसका पंडाल का, इसका उसका, सब प्रकार का इंतजाम किया। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक कहानी बोला, बोले चार प्रकार के लोग होते हैं। बोले एक क्रियाशील मूर्ख, क्रियाशील मूर्ख, क्रियाशील मूर्ख मतलब बंदर जैसा, एक तो मूर्ख है और दूसरा क्रियाशील, वो सबसे खतरनाक है। वो चुपचाप अगर सोते रहेगा तो ठीक है, आलसी मूर्ख है तो चलेगा, क्रियाशील मूर्ख सबसे खतरनाक है। एक तो मूर्ख और दूसरा एक्टिव, एक्टिव फूल। फिर गए उससे थोड़ा अच्छा है आलसी मूर्ख, मूर्ख है और आलसी है, सोता रहता है तो चलेगा, किसी को तकलीफ, दूसरे को तकलीफ नहीं होता। बोले उससे भी ऊपर है क्रियाशील बुद्धिमान, एक्टिव इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है और बहुत ही क्रियाशील है, ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, सब कर लेता है, सब अपने आप करता है। पर बोले उससे भी अच्छा है आलसी बुद्धिमान, लेजी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि आलसी, आलसी का मतलब यहां सोया रहता है ऐसा नहीं, आलसी का मतलब है बुद्धिमान की लक्षण ये है, कम से कम प्रयास में ठीक जगह पे अगर डाला जाए तो ज्यादा से ज्यादा परिणाम आना चाहिए, ये बुद्धिमता का लक्षण है। तो बोले तुमने पूरा कार्य तुम पे क्यों संभाला, तुम कुछ करना था और सब लोगों को भी उसको उसमें लगाना था, डेलीगेशन, प्रॉपर डेलीगेशन तुम भी कर रहे हो, साथ साथ में लोगों को भी, ताकि सब भी हो जाए और सबको भी थोड़ा भक्ति का एक मौका मिले और साथ साथ में तुम्हारा काम भी हो जाए। तो बोले दिस इज इंटेलिजेंट एंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग हमारे स्कूल में कहानी पढ़े थे, एक ससा और एक कछुआ, कछुआ कछुआ और एक खरगोश का रेस हो गया। तो खरगोश जो था वो बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही ज्यादा उत्साह था उसका, भागा भागा भागा, और कछुआ जो था चलता आ रहा, चलता रहा आराम से। कछुआ पहले पहले भाग गया, बाद में देखा अभी वो टाइम है, आराम से सो गया, उधर थक भी गया सो भी गया, उठ के देखा तो कछुआ पहुंच गया था ऑलरेडी। तो कहने का मतलब है उत्साह का मतलब सिर्फ नहीं कि एक क्षण इधर एक क्षण उधर एक क्षण उधर फदक 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 के और लास्ट में बीच में सो गया, बस इतना थक गया, इतना सब नस खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं। उत्साह मतलब स्टेडीली गोइंग ऑन ईयर आफ्टर ईयर, साल भर चल रहा है, पर जो शुरू किया पीछे मुड़ के देखना नहीं, उसका मतलब उत्साह बुद्धिमता के साथ अप्लाई किया गया। जैसे मैराथन, मैराथन जब दौड़ते 32 किलोमीटर का, तो 100 मीटर रेस में कैसा दौड़ते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं 100 मीटर में बस, पर जब मैराथन दौड़ना है तो उसमें बुद्धिमता के साथ अपना शक्ति को लगाना चाहिए। मतलब मेरे को भी 32 किलोमीटर भागना है और पूरा एनर्जी को समझ लेना है, मेरे पास कितना एनर्जी है, कितना टाइम है और कितना दूर जाना है, ये सब देख सज के नाप तोल के शुरू किया, सेम स्पीड मेंटेन करके 32 किलोमीटर तक रुकना नहीं चाहिए और खत्म करके रहना चाहिए। इसको कहते हैं पूरी शक्ति लगाना उत्साह के साथ, पर बुद्धिमता के साथ। मूर्ख आदमी भाग जाएगा पहले पहले, अलग रहेगा कि सब फर्स्ट हो गए और बाद में कहां दिखा भी नहीं। अति भक्ति चोरेर लक्षण प्रभुपाद कहते थे कभी कभी कभी, वो इतना भक्ति इतना भक्ति इतना फुदल फुदल फुद फुदक रहा है और बाद में 2 साल के बाद किधर दिखता भी नहीं ढूंढने से। ऐसा नहीं, भक्ति मतलब अंतकालेच मामेव, अरे पूरा जीवन भर हमको भक्ति करना है, वो उत्साह, उत्साह मतलब स्टेडीनेस, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, पीछे मुड़ के देखना, एक बार शुरू कर दिए पूरा ताकत लगा के पहुंचने तक स्टेडीली चलते रहना। और दूसरा चीज है व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक बुद्धिमता का मतलब है हमारा जो एनर्जी है वो फोकस होना चाहिए। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, जो बुद्धिमान आदमी नहीं है अपना बुद्धि को इधर लगाता उधर भी लगाता, वो भी थोड़ा करना ये भी करना, अंत में 10 जगह गड्ढा खोदा 10-10 फुट कहीं भी पानी नहीं आया, उससे अच्छा एक ही खोदते रहो 50 फुट वहां पानी आएगा कम से कम। तो फोकस करना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन मतलब भगवान ने एक कुछ शक्ति दिया है, एक शरीर दिया है और कुछ समय दिया है, तो वो शक्ति को इस समय के अंदर फोकस करके एक ही जगह दिशा में चलते रहे तो उसको कहते हैं बुद्धिमता के साथ प्रयास। जैसा ये भिंग होता है, भिंग तो सूर्य की किरणें अगर एक पेपर के ऊपर गिरे 100 साल तक गिरे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पेपर थोड़ा गर्म होगा बस। अगर वही वो भिंग को एक एंगल में रखिए सूरज की किरणों के साथ तो भिंग कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 2 इंच का डायमीटर होगा, पर उसमें जितना सूरज की किरणें गिलती है अगर वो एक जगह केंद्रित हो एक पॉइंट के ऊपर, जितना उसको सूक्ष्म बनाएंगे पूरा पेपर जल के राख कर देगा। इसी तरह से कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, बुद्धिमान आदमी क्या है अपना जो शक्ति है, शरीर मतलब थोड़ा शक्ति दिया है थोड़ा समय दिया है थोड़ा बुद्धि दिया है, तो उस बुद्धि को के द्वारा अपने शक्ति को केंद्रित करके ऐसे जगह में लगाना जिसके द्वारा सब जगह यथा तरोर मूल निषेचनेन, अगर जड़ में पानी डाल दिया तो धड़ डाली पत्ता फूल फल सब में पहुंच जाना चाहिए। इस तरह से बुद्धिमता मतलब केंद्रित करना अपने सारे शक्ति को एक जगह जहां से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फल मिल पाए, ये बुद्धिमता का लक्षण है। और कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना का मतलब क्या, एक्चुअली सच में देखा जाए तो भक्त लोग जितना तपस्या करते हैं उससे ज्यादा कर्मी लोग करते हैं। आप देखोगे क्या तपस्या करते हैं, बहुत समय की बात है, एक दिन जन्माष्टमी के समय जन्माष्टमी के लिए सोवेनियर बनाना था मुझे, और मैं एक प्रिंटर के पास गया था, प्रिंटर के पास गया वहां बैठा, दोनों बैठे हुए हम लोग, जन्माष्टमी तो हम लोग पूरा फास्टिंग करते दिन भर फास्टिंग करते पानी भी नहीं पीते, तो वैसे भी मेरा फायदा, बोला ठीक है चलो बैठे रहोगे काम भी हो जाएगा, तो बैठा था उस पेपर वाले अपना प्रिंटर के साथ कर्मी है बाहर भक्त भक्त नहीं हो, सुबह बैठा था तो रात को 8:30 बजे उसने दिया, 10 बजे का प्रोग्राम है 8:30 बजे दिया हो तो 8:30 बजे क्या हो गया, उसके टेबल में से एक पेपर फिसल के नीचे गिर गया और एक ऐसा डब्बा रखा था डब्बा के नीचे चला गया, तो उसने डब्बा को उठाया पेपर उठाने के लिए तो बोला अरे ये डब्बा तो भारी लगता है, तब तो उसको याद आया कि मैंने सुबह से डब्बा कुछ खाना खाया ही नहीं, मेरे सामने बैठा हुआ है सुबह से वो, ना पानी पिया ना खाना खाया, और वो जन्माष्टमी का ये नहीं कर रहा महोत्सव नहीं बना रहा है, वो उसका दैनिक कार्य है ये, रोज इतना बिजी रहता है वो कि खाना खाना भूल गया। हम लोग तो निर्जल एकादशी के लिए 1 साल पहले कैलेंडर देख के प्लान करते योजना बनाते, ये आदमी न जन्माष्टमी न कुछ, उसका बिजनेस थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा अगर बिना खाए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डाला, खाना भूल गया पानी पीना भूल गया, तो मन ही मन सोचा भाई तुम्हारे चरण का धूल मेरे सर पे दे दो, काश मुझमें इतना उत्साह होता कि 4 पैसे के फायदा के लिए आदमी खाना खाना भूल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा फेस्टिवल है, अपने आप सोना भूल जाता है पानी पीना भूल जाता है, पर वो मूर्ख प्रकार का उत्साह है। क्यों? क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना तपस्या किया पर फायदा क्या मिला उसको? भले उसको लगेगा कि मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा कमा लिया, पर किस चीज के लिए? आयुष क्षण एकोपी नलभ्य स्वर्ण कोटि, विचारण के पंडित कहते हैं आयुष का मनुष्य योग मनुष्य योनि का एक एक क्षण स्वर्ण की करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी खरीद नहीं सकते, इतना मूल्यवान है। तो भले उत्साह है पर उद्देश्य क्या है? और थोड़ा तपस्या करूंगा तो गाजर मिल जाएगा मुझे। गधे लोगों को ऐसे ही बना, गधे लोग ऐसा है तो माया ने उस व्यक्ति को गधा बना दिया है, गाजर लटका दिया है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम धनी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, चलो भागो 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 भागो, और जितना भागता है वो गाजर सामने जाता रहता है। वो बुद्धिमत्ता नहीं है।
तो फोकस होना चाहिए।
पर कृष्ण भावना का मतलब है हमारा उद्देश्य हमारी इच्छा से लिए नहीं, हमारे भोग के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अनन्यास चिंतयंतो मां, अनन्य भक्ति, यश के लिए नहीं, नाम या मेरा यश बड़ा फैले उसलिए नहीं, या मुझे फायदा होगा इसलिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करना। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जिस हद तक हमारी भक्ति अहेतुकी, बिना हेतु के कैसा काम करेंगे? हमारी हेतु है भगवान प्रसन्न हो और हम शुद्ध हो जाएं और हमारा उद्देश्य शुद्ध रहे, इसको कहते कृष्ण भावना भावित होना। दूसरा, ये जो एनर्जी है, ये जो उत्साह है, हमेशा एक सद्गुरु के निर्देशन में चलना चाहिए, नहीं तो बाद में मुड़ के देखेंगे कि हमने बहुत सारा एनर्जी बर्बाद कर दिया। कभी कभी उत्साह क्या हो जाता है, एक ऐसा इन्फेक्शियस, ऐसा वो संसर्ग जनी क्या ऐसा, मतलब इतना इन्फेक्शियस है ना, तो उत्साह में आदमी थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही कर बैठता है कुछ, तो कभी कभी गलती हो जाता है उत्साह के कारण, अति उत्साह। इसीलिए उस उत्साह को सही दिशा में फोकस करने के लिए एक सद्गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने कुछ अपने शिष्यों को कहा था जापान में, पैसा इकट्ठा करो मंदिर के लिए, तो उत्साह से कारण ज्यादा ज्यादा प्रभुपाद को खुश करना है, पर पैसा कमाना है बोल के उल्टे सीधे सब तरीके से पैसा वो लोग कलेक्ट करने लगे। देखिए नहीं, बस पैसा जाना चाहिए, एक महीने के अंदर इतना पैसा जाते रहना चाहिए प्रभुपाद जी के पास। मंदिर बन रहा था, सब हो रहा था, फिर प्रभुपाद को पता चला कि ये लोग कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस समय प्रभुपाद ने बोला बस अभी जो किया हो गया, भगवान तुमको संरक्षण किए क्योंकि मेरे निर्देशन पे तुम कर रहे थे, अभी हो गया आ जाओ। पर वो इतने उत्साह थे, बोले नहीं और थोड़ा कमा लेंगे, और थोड़ा और 1-2 करोड़ हो जाएगा उसके बाद आ जाएंगे, पर उनका पतन हो गया बाद, बहुत तकलीफ हुआ भक्ति में। तो गुरु के निर्देशन में हमारा उत्साह अगर मार्गदर्शन रहे तो अच्छा है। एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अगर हमारा उत्साह को गाइडेंस करे ना तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और प्रचार के लिए भी अच्छा है। नहीं तो कभी कभी वो उत्साह थोड़ा ओवरशूट हो जाता, ओवरफ्लो हो जाता है, और हमको भी तकलीफ है, सबको भी तकलीफ हो सकता है। और तीसरा, उत्साह मतलब है जो भी मिला सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये माइक है, माइक को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जग है उसको भी लगा सकते हैं, करताल है उसको लगा सकते हैं, पुस्तक मिला अच्छा, पेपर मिला पेपर को भी लगा सकते हैं भगवान, क्योंकि कोई भी मया ततम इदम सर्वम जगत, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो बुद्धिमान आदमी जो है वो जो कुछ भी उसको आता है उसके हाथ में भगवान की कृपा से, उसको बुद्धिमत्ता के साथ भगवान की सेवा में लगाता है। और अंत में कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, और ये सारा उत्साह सारी चेष्टा जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो उत्साह का मतलब है क्रियाशील होना आलस पर नहीं, बुद्धिमता के साथ, यानी कम से कम समय में और कम से कम शक्ति डालकर ज्यादा से ज्यादा उसका सफलता प्राप्त करना, स्टेडीली चलना और फोकस्ड रहना, और तीसरा कृष्ण भावनामृत होकर। कृष्ण भावनामृत होने का मतलब है हमारा उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए और कुछ नहीं, एक सद्गुरु के निर्देशन में कार्य करना, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, बुद्धि दिया है, कर दिया है, पैसा दिया है, कुछ इन्फ्लुएंस दिया है, जो भी है, जो भी मिला भगवान की कृपा से, उसको भगवान की सेवा में लगाना और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। दूसरा सवाल उठता है, क्यों उत्साह जरूरी है? क्या उत्साह के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते? क्योंकि उत्साह जो है श्रद्धा का जीवन है। उत्साह तभी आएगा जब हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है कि हम सही मार्ग पे हैं। जिसके जो जो उत्साह उत्साहित नहीं है, इसका मतलब उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। ये बहुत जरूरी है, तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। वो हम अगले पर अगले इस पे निश्चयात, बिना निश्चय के कि हम सही मार्ग पे हैं, उत्साह नहीं आएगा। और कोई कहता है कि मुझे पूर्ण भगवान के ऊपर श्रद्धा है और उसके जीवन में भक्ति करने में उत्साह नहीं है, इसका मतलब वो श्रद्धा निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है, सचमुच में श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा है तो उसका सबूत है उत्साह, क्योंकि जब उत्साह तब आएगा जब हमको पूर्ण विश्वास है कि हम सही मार्ग पे हैं। कई बार हमने आपको बताया होगा ये उदाहरण, एक बार हम एक बड़े कार्यक्रम के लिए जा रहे थे मुंबई से 20 किलोमीटर दूर, बारिश का दिन था और एक सड़क के एक ऐसा फोर्क पे आ गए, दो रास्ता जा रहा है, साइन बोर्ड नहीं है, आसपास में कोई है नहीं, तो हम गाड़ी रोके, 20 किलोमीटर जाना है, 10 मिनट बाकी है, लेट हो गया प्रोग्राम के लिए, अभी बारिश आ रही है और दो रास्ता है, तो हमने बोला ये रास्ते जाऊं कि ये रास्ते जाऊं, दोनों ऐसे जा रहे पूरा अलग अलग दिशा, टाइम नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे, पूछने के लिए कोई नहीं है, बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, बारिश आ रही। अंत में एक भक्त ने कहा प्रभु जी ऐसा करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड्स बोला तो ऐसे, टेल्स बोला तो ऐसे, चलो ठीक है, टेल्स ऐसे, बायां वाला ले लिया। पर जितना भी चाहे वो ड्राइवर जो प्रवचन करता थे बेचारे, वो ड्राइविंग कर रहे थे, एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है कि सही मार्ग पे है कि नहीं, कैसा दबाएंगे, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना वापस आना पड़ेगा अगर गलत रास्ता है। 2 किलोमीटर गए हम लोग, 2 किलोमीटर जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, तो उसको पूछा ये वसई ऐसे वसई रोड ऐसे जाता है क्या? हाँ, सुनाई नहीं देता था, कहा वसई रोड इधर जाता है क्या? तो पहले आसमान देखा, सब देखा, और बाद में आशा करा रिवर्स गया, 2 किलोमीटर दिते जा, बस समझ में आ गया उसको कहां हमने गलती की। फिर जो ड्राइवर ने मोड़ा और जो ड्राइविंग किया, आज तक कभी ड्राइविंग नहीं किया वैसे, पूरा उत्साह के साथ, पूरा एक्सीलेटर दबा के, और एक्चुअली पहुंच गए टाइम पे हम लोग। उसको मालूम था कि अभी मैं एकदम सही मार्ग पे हूं, जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है। तो जब तक विश्वास नहीं है हृदय में, तब तक उत्साह नहीं आएगा। तो उत्साह का लक्षण है विश्वास है उस व्यक्ति की, मालूम है इसके अलावा, भक्ति के अलावा और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्ति भाजा, अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है, भक्ति एकमात्र मार्ग है, इस चीज में श्रद्धा नहीं है, तो उसके जीवन में उत्साह नहीं रहेगा, मुर्दा जैसा है रहेगा। और मुर्दा जैसा है और कहता है कि मेरे बहुत श्रद्धा है, फालतू, इसमें कोई फायदा नहीं, फालतू ऐसे श्रद्धा रखे। तो उत्साह का जीवन है
श्रद्धा का जीवन है उत्साह। उत्साह के बिना कोई कहता है कि श्रद्धा है नहीं, इसीलिए उत्साह होना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना उत्साह के हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, बस आलसपन आ जाएगा। उत्साह का विरुद्ध है आलस्य, जड़ता। तो श्रद्धा बिना उत्साह के निरर्थक है, कोई मतलब कोई फालतू नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो श्रद्धा जो है कैसा बढ़ाया जाए, दो चीज से बढ़ता है श्रद्धा, जैसा संग वैसा रंग। अगर श्रद्धालु लोगों के साथ संग करेंगे, जिनका श्रद्धा ज्यादा है भगवान में, भक्ति में, ऐसे लोगों से बढ़ता है, क्योंकि फेथ बिगेट्स फेथ। श्रद्धा प्राप्त करना है तो श्रद्धालु लोगों के संग में रहना पड़ा जाए, वो जरूरी है। और वो श्रद्धा कहां से मिले, भक्तों के साथ, और ऐसे महान भक्तों का जीवनी पढ़ना जिन्होंने अपने जीवन में तीव्र श्रद्धा दिखाई, यानी भागवतम। भागवतम में ऐसे महान ध्रुव महाराज, क्या श्रद्धा, क्या दृढ़ विश्वास। प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तबु हम बदने ना छाड़े हरिनाम। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे को, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़े से हरे कृष्ण महामंत्र आएगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरा प्राण भी निकाल दो पर तुम मुझे हरिनाम बोलने से रोक नहीं सकते। तो ऐसा उत्साह और श्रद्धालु भक्तों का जीवनी पढ़ेंगे या ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हम प्रगति कर सकते हैं। उत्साह दो प्रकार का होता है, निष्ठिता और अनिष्ठिता। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनंत निवृत्ति तथा निष्ठा। आदो श्रद्धा, फिर साधु संग में आते हैं, फिर भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा होता है। तो दो प्रकार की उत्साह है, एक निष्ठिता। निष्ठिता उत्साह मतलब वो उत्साह जो कभी खत्म नहीं होता, मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता। और दूसरा उत्साह जो अनिष्ठिता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छा कभी बुरा। तो क्यों, अनिष्ठिता का मतलब अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा। श्रद्धा है, भक्तों के संग में आए, भजन क्रिया शुरू किया, पर अनर्थ है हमारे जीवन में, इसीलिए कभी उत्साहमयी। छह प्रकार के बलाय बताए गए अनर्थ। एक है उत्साहमयी, उत्साहमयी मतलब ऐसा लगता है बहुत उत्साह है पर ज्यादा दिन टिकता नहीं है उत्साह। और दूसरा है घन तरल, कभी घन घना कभी एकदम तरल। व्यूढ़ विकल्प, करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, भागो या नहीं भागो, जोर से करूं या नहीं करूं, 16 करूं या नहीं करूं, 64 करूं या नहीं करूं, इनडिसाइसिवनेस, हमेशा व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प। फिर विषय संग्रह, उत्साह करने की कोशिश करते हैं पर इंद्रियों के साथ संग्रह, सॉरी क्या बोलते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष, संघर्ष इंद्रियों के साथ संघर्ष। इच्छा तो है पर इंद्रियां मदद नहीं करती। फिर नियमाक्षमा, कभी कभी वचन लेते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, पालन भी करते हैं और कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की अनर्थ है। तो इसीलिए उत्साह कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं हो पाता, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है। और तीसरा है, छठा है तरंग रंगिनी। पहले पहले उत्साह रहता है, जब उत्साह रहता है तो भगवान सफलता देते हैं, और सफलता मिलने के बाद आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। सफलता मिल गया, नाम यश मिल गया, अच्छा एक पोजीशन मिल गया, एक अच्छा गाड़ी मिल गया, एक बंगला मिल गया। भक्ति में शुरुआत करते हैं तो भक्ति की एक बाई प्रोडक्ट है कि भौतिक रूप से सब अच्छा हो जाता है। पहले पहले शुरुआत में बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत उत्साह के साथ जा रहे थे, उस उत्साह को देखकर अथॉरिटीज ने बोला अभी इसको टेंपल प्रेसिडेंट बना लो, फर्स्ट क्लास टेबल दे दो, फर्स्ट क्लास एसी रूम दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक घर बगल दे दो मंदिर के बगल में, सब हो गया ना, अब क्यों गधे के समान भागना, ठीक है हो गया, अभी सेटल हो गया मेरा जीवन। तो तरंग रंगिनी का मतलब भक्ति के कारण कुछ सफलता मिल जाती है और उसमें अटक जाना और लक्ष्य को भूल जाना। तो इस तरह से जब हनुमान जी ने छलांग मारा, जब हनुमान जी छलांग मारे लंका की ओर जाने के लिए प्रभु की सेवा में, उस समय मैनका पर्वत ऊपर आई, सोने की पर्वत, और मैनका पर्वत ने कहा कि तुम इतने दूर जा रहे हो, थोड़ा आराम करो। हनुमान जी बोले आराम हराम है, पर उन्होंने उसको सम्मान दिया, मैनका पर्वत को उसको स्पर्श किया, मतलब स्वीकार करता हूं मैं, बहुत धन्यवाद आपने ऑफरिंग किया, उड़ते गए। तो इस तरह से भगवान की भक्ति करते वक्त कभी कभी सफलता मिलती है, यश मिलता है, धन मिलता है, इस तरह से लोग सम्मान देने लगते हैं और हमको लगता है हो गया ना, अभी सब कुछ हो गया और क्या चाहिए जीवन में, और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना उत्साह खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर उत्साह को मेंटेन नहीं किए, उत्साह को अनर्थ को निकालना है तो उत्साह होना जरूरी है, बिना उत्साह के अनर्थ जले जल के राख नहीं होगा। जब आग जोर से जलता है उसमें जितना भी ईंधन जालो डल के राख, जल के राख हो जाता है। उत्साह ऐसी शक्ति है जैसा जब एक नदी बहता है पूर्ण तीव्रता के साथ बहता है, बड़े बड़े चट्टान भी डाल दो, कितना फोर्स से नदी बहता है ना, कहीं भी कितना भी पहाड़ भी डाल दो, इधर उधर से कहीं तो निकल के पहुंच जाता है, समुद्र पहुंचने तक वो नदी रुकता नहीं। गंगा का प्रवाह जैसा है, जितना भी पत्थर डालो, जितना भी बाधाएं आए, जितना भी इंपेडिमेंट, कहीं से साइड में नहीं, इतना फोर्स रहता है। इसी तरह से अगर भक्ति में हमारा उत्साह नहीं रहे तो थोड़ा भी बाधा आ गया, मैं क्या करूं, अभी बाधा आ गया, ठीक है बाद में करूंगा, ये सब निकल जाने तो उसके बाद करना तो है ही ना, पूरा जीवन खत्म खत्म हो जाएगा। उत्साह मतलब इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कुछ भी आए तो तोड़ के निकलना, तोड़ के नहीं तो उसके साइड में से निकलना, नीचे से निकलना, कहीं तो निकल जाना बस, और वो तब होगा जब उत्साह रहेगा। इसीलिए उत्साह बहुत जरूरी है। बिना उत्साह के आज तक कोई भी यशस्वी नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए क्या उत्साह था, क्या चार सेंटर खुल गया न्यूयॉर्क में, दो सेंटर खुल गया, अभी क्या जरूरत है, नहीं, उनका उत्साह रुका नहीं। पृथ्वी आचे जतो नगर आदि ग्राम, सर्व सब सब शहर में एक एक होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए, उधर रुके नहीं तब तक। वो बोल रहे थे अभी रिटायरमेंट हो गया मेरा, अपचाप सा इतना 10-15 मंदिर है, कहीं भी जाके मैं परमानेंटली आराम से रह सकता हूं, सेटल हो सकता हूं, वहीं रुक सकता था और बोल सकते थे लोग हां 10 सेंटर खोला, पर उनको उससे लेना देना नहीं था। तो वो उत्साह बहुत जरूरी है, उत्साह के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। ये अनर्थ बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, इसको जला के राख करना है तो उत्साह की अग्नि होनी चाहिए, हमेशा जलते रहनी चाहिए। जब प्रभुपाद जी के शिष्य श्याम सुंदर और मालती माता जी, गुरुदास और यमुना और मुकुंद और जानकी, तीन गृहस्थों को प्रभुपाद ने अमेरिका से लंदन भेज दिया, एक व्यक्ति का जाने का पैसा भी नहीं उनके पास, एक व्यक्ति पार करने के लिए पैसा नहीं है, और 6 लोगों को भेज दिए, बोले जाओ लंदन में जाके प्रचार करो, न सेंटर है ना कुछ, एड्रेस जाने का अभी कहां रहेंगे वो भी नहीं मालूम, प्लेन में जाने के लिए पैसा नहीं है, बोले जाओ प्रचार करो, सेंटर खोलो, लंदन को भक्त बनाओ। तो ये पूछे क्या करना है, कैसे करना है, तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, बोले जस्ट बी एंथुजियास्टिक, और चार्ली चैपलिन का उदाहरण दिया, लंदन जा रहे थे, लंदन के फेमस है ना चार्ली चैपलिन, तो बोले चार्ली चैपलिन का क्या हुआ, ये लोग कुछ कर रहे थे, बोले हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं ना, अगर हम लोग अमेरिका में नाचते थे हम लोग तो हिप्पी लोग, चलेगा लंदन में जाके नाचेंगे तो लोग बोलेंगे पागल है हटो यहां से। तो बोले ऐसा कैसे कर सकते हम लोग, तो उस समय प्रभुपाद ने कहा अरे उत्साह से तुम जो भी करोगे ना वही फैशन बन जाएगा। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक फिल्म में चार्ली चैपलिन का पिक्चर है, उसमें क्या होता है, चार्ली चैपलिन डांस करते रहता है, बॉल डांस करते 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 एक सोफा में जाके बैठता है, उस सोफा में थोड़ा गम चिपकाए रहते, वो गम में उसका कोट अटक जाता है, फिर उठने जाता है तो उसका कोट फट जाता है बीच में, ऐसा टर करके फट जाता लंबा, तो नाचते रहता है वो, नाचते रहता तो सब हंसते रहते, तो समझता नहीं क्यों हंस रहे। फिर जाके ऐसा पीछे जाके देखता है, मतलब वो स्केटिंग के ऊपर नाचते हो लोग, स्केटिंग पहन के, तो ऐसा टर करके जाता है वो आईने के पास, खड़ा होकर देखता है क्यों हंस रहे भाई, पीछे क्या लगा हुआ, पता चलता है कि 6 इंच फट गया है, 6 इंच है, 1 फुट फट गया है। तो दोनों छोर को पकड़ के फर्र करके पूरा यहां तक फाड़ देता है, कॉलर तक फाड़ के ऐसा आता है और ऐसा नाचने लगता है इतना उत्साह के साथ। लोग बोलते हैं ये तो नया फैशन होगा शायद, जरूर ये नया फैशन होगा, इसीलिए यहां थोड़ा अपना दिखाने आया। तो सब लोग, अच्छे अच्छे लोग जिनका कोट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, वो भी जाते हैं आईने के पास, पूरा फाड़ देते हैं, वो भी नाचने लगते। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, बोला तुम लोग जो भी कर रहे हो इतना उत्साह के साथ और आनंद के साथ करोगे तो लोगों को लगेगा ये सब कर रहे तो इसमें बहुत आनंद होगा, हमको भी करना ही चाहिए, हमको भी शेविंग करना चाहिए, हमको भी ये रोब पहनना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहन के कितना खुश है, आनंद है, इतने उत्साह से काम कर रहे। और सही में हम देखते हैं ये तीन लोग, तीन कपल, 6 लोग पूरे ब्रिटिश में जाकर इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों? उनके पास ना पैसा था ना कुछ, एक व्यक्ति जाता था और पैसा वो पोस्ट में भेजता था, फिर दूसरा व्यक्ति जाता था वही पैसा लेके, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना कुछ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट दिखा अंदर जाता था वो पैसा भेजता था पोस्ट से, फिर ये आता था वो भी वही, एक ही पैसा वही इतना तो दिखा कर 6 लोग अंदर गए। अंदर जाके एक छोटे छोटे डब्बे में, बड़ा बड़ा सड़क के बगल में डब्बा रहता, वहां रह के उन्होंने प्रचार किया और बाद में जॉर्ज हैरिसन को भक्त बनाया और इस तरह से पूरा लंदन में फैल गया। तो कहने का मतलब है अगर उत्साह रहे तो पूरी दुनिया बोलेगी हाँ इसमें, भले अलग लगे, हमको लगेगा अरे हम लोग अलग चीज बोल रहे हैं, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा आचार अलग है, विचार अलग है, पर उत्साह के साथ बोलेंगे तो सबको लगेगा इतना खुशी खुशी से आराम से आनंद से कर रहे हैं, जरूर इसमें कुछ है। और इस तरह से उत्साह के साथ जब करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी अपने आप, और तब निष्ठिता भक्ति हो जाएगी, अनिष्ठिता नहीं होगी। उत्साह को कैसे बढ़ाए हमने ऑलरेडी चर्चा किया, एक भक्तों के संग में, दूसरा भागवत और इत्यादि सीसी जहां महान भक्तों का जीवनी है उसके बारे में चर्चा करके। प्रभुपाद ने एक भी कहा कि अगर तुम्हें उत्साह नहीं है तो उत्साह दिखाओ तुम, बस शो एज इफ यू आर एंथुजियास्टिक। उत्साह नहीं है पर फिर भी उत्साह जैसा दिखाएंगे, नाचेंगे तो धीरे धीरे उत्साह आ जाएगा। उत्साह के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती। उत्साह का विरुद्ध है आलस्य। जैसे जप, हरिनाम, संकीर्तन, जप में 3 प्रकार का, एक सबसे बड़ा ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है, एक अपराध नहीं वो सारे अपराध का कारण हो जाएगा बाद में, क्योंकि ध्यान पूर्वक जप नहीं करे तो धीरे धीरे सब अपराध करने लगेंगे। तो ध्यान पूर्वक को कहते हैं प्रमाद। प्रमाद में 3 प्रकार के हो गए, विक्षेप, जड़्य और औदासीन्य। तो और दोनों सबका कारण एक ही है, निरुत्साह जप करना, किसी तरह से धक्का मार के कैसे तो चलाना। अगर वो उत्साह नहीं रहेगा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अरे झाड़ू मार रहे हैं और सोते सोते मारते रहेंगे वही जगह पे 10 बार, कैसा होगा? झाड़ू मारना है तो एकदम उत्साह होके थोड़ा सा झाड़ू मारना चाहिए, तब ना जाके गंदगी निकलेगी, पर उसमें भी हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। इनअटेंटिवनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ, इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया मतलब लैक ऑफ इनएक्टिविटी, आलस्य। तो 3 प्रकार के बताए गए, औदासीन्य, औदासीन्य का मतलब चलो आज 16 नहीं किया, 15 किया, कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे, एक डायरी में लिख के रखा है भाई इतना बाकी है, इतना बाकी है, 6718 माला बाकी है बस, और बाद में 6,27,800, मतलब अगले जन्म में कर लेंगे ना, चलेगा, ये जन्म में तो नहीं होने वाला अभी, कब तक और डायरी में लिखते रहोगे? वो डायरी भी बाद में थक जाएगा, एक एक डायरी भर गया, 10 डायरी भर गया है, वो कब भरोगे? ऐसा नहीं चलता हूं। तो औदासीन्य मतलब उदासीन, ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल सही। दैट इज द फर्स्ट एक प्रकार का ध्यान पूर्वक। और दूसरा है जड़्य, जड़्य मतलब जड़ता। आध्यात्म सोल जो है, आत्मा जो है, हमेशा क्रियाशील है और शरीर जो है वो जड़ है। शरीर जड़ है और आत्मा जो है क्रियाशील है। जिस हद तक आप अपने आप को समझते हो कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, उतना उत्साह रहेगा। और जिस तक आप समझोगे कि मैं शरीर हूं, तो शरीर थक जाएगा थोड़े समय के बाद। शरीर का स्वरूप है, वो थक जाएगा, वो सोते रहेगा, वो जड़ है। मतलब जहां बैठा रहोगे वो 50,000 साल तक वहीं बैठा रहेगा। पर आत्मा एक क्षण में इधर उधर उधर भाग, क्रियाशील रहता है। तो जब तक अगर हमको क्रियाशील, अगर हमको आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा एक विश्वास होना है, तो आत्मा के स्तर पर काम करना पड़ेगा। आत्मा का कभी रिटायरमेंट नहीं होता, शरीर का रिटायरमेंट होता है। प्रभुपाद जी ने अपना सारा आंदोलन रिटायरमेंट के बाद किया। एक्चुअली पूरा आंदोलन जो विश्व भर का जो समाज है उस रिटायरमेंट के बाद किया। एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भले एक जगह शरीर बैठे रहे पर उत्साह के साथ हमारा जब चालू है, साधना चालू है, वो कभी भी रह सकता है किसी भी हालत में। तो जड़िया, जड़िया मतलब शुरू किया और सो गया बस। अब देखते हैं कभी कभी कितने लोग आदत पड़ गया, बाद में स्वभाव हो गया था उनका, पहला दो माला वाह ऐसा लगता है पूरा दुनिया को जीत लेगा ये तो, फिर तीसरा चौथा पांच, फिर अगले दिन 16वां नहीं हो पाता। और तीसरा है विक्षेप, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। जब हो रहा है पर मन पूरा दुनिया भ्रमण करके आ रहा, पूरा योजना बन रहा है, इसके बाद ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अच्छा योजना आ गया ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, अरे लोग को लगता है क्या भक्ति कर रहा है, और ये जो नाम चल रहा है उसका पूरा योजना बन रहा है। और अगर किसी को मारने का आ गया तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वाह इतना स्पीड में चल रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है, आज उसको मार के रहूंगा, ऐसा पीटूंगा उसको, हरे कृष्ण पछता, लोग को लगता है क्या भक्ति कर रहा है। कभी कभी हम देखते हैं 10 साल 15 साल भक्ति किया पर विक्षेप अगर रहेगा तो क्या होता है। हाँ, विक्षेप का कारण क्या है, विक्षेप अगर चलता रहा भक्ति का, तो एक प्रकार का इल्यूजन, एक प्रकार का मोह में पड़ जाता है आदमी। और इसके कारण जप करके भोग करने की इच्छा बढ़ती है, धन कमाने की इच्छा बढ़ती है, स्त्री संग करने की इच्छा बढ़ती है, यश प्राप्त करने की, और यहां तक कि धोखा देने भी करने लग जाते। तो कभी कभी हम देखते अरे इतने साल से भक्ति कर रहा है और एक मामूली कर्मी आदमी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा कैसा व्यवहार कर रहा है, इतना धोखा दे रहा है, ऐसा भोग में लग रहा है, ऐसा कैसा, यानी हरे कृष्ण काम नहीं कर रहा। हरे कृष्ण काम करता है पर वो अपराधहीन जप होना चाहिए। अगर हम इस विक्षेप को संभालेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कभी देखते हैं इतना जप भी, इतना साल जप करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नाम के वास्ते जीवा हिल रहा है। अगर आप टेप रिकॉर्ड रख दो, अभी है ना प्रभुपाद का टेप रिकॉर्ड रखते हैं, जैसा आप ही एक रिकॉर्ड कर दो 16 माला का और उसको 24 घंटे चला के रखो, तो वो टेप रिकॉर्डर 10 साल तक चालू करके रखो, तो क्या वो टेप रिकॉर्डर भगवत धाम जाएगा, क्योंकि उसने 17 करोड़ माला जप लिया टेप रिकॉर्डर, क्या टेप रिकॉर्डर भगवत धाम जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टेप रिकॉर्डर जो है आवाज कर रहा है, टेप रिकॉर्डर का मन है ही नहीं, मन लगाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मन है ही नहीं उसका। इसी तरह से अगर हमारा भी सिर्फ जीवा चल रहा है पर मन कहीं और है, पानी डाल रहे हैं पर जड़ में डालने के बदले कहीं और डाल रहे हैं, तो जहां पानी डाल रहे हैं वो पानी बढ़ेगा, अब वो चीज बढ़ेगा पर भक्ति लता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए ये तीनों को, औदासीन्य, जड़्य, विक्षेप, तीनों को खत्म करना बहुत जरूरी है। और तीनों प्रमाद ध्यान पूर्वक जप न करना, और इसके कारण सारे 10 अपराध अपने आप होने लगते हैं। और आदमी भले 15 20 साल तक जपा करते रहे, प्रगति नहीं होगी। ओ कनिष्ठ स्तर पर ही रहेगा, बल्कि वहां से भी उसका पतन हो जाएगा। अगर उत्साह पूर्वक जप नहीं करेंगे, उत्साह पूर्वक ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तो फिर नाम के वास्ते ये जप हो जाएगा। तो हाँ, वो बहुत ज्यादा है आज उत्साह। मैं सोचा था 6 कवर करेंगे, अगर इस रेट में जाए तो निश्चय ही उत्साह भी नहीं होगा। एनीवे, एक चीज है, अगर औदासीन्य को दूर करना है, औदासीन्य मतलब क्या, दृढ़ता नहीं है, कभी 16 किया, कभी 15 किया, कभी 13 किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको दूर करना है तो नियमित रूप से हमारा 16 करना ही चाहिए ठीक से। दूसरा, बड़े ध्यान पूर्वक उतना कम से कम करना चाहिए, और तुलसी महारानी के सामने बैठकर करे तो बहुत ही अनुकूल है। और भक्तों के संग में आकर जप करे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हमसे वरिष्ठ भक्त, जिनको नाम के प्रति रस है, जिनको नाम में रस है, और ऐसे लोगों के संग में करे तो हमारे भी थोड़ा उत्साह बढ़ती है, हमारे भी आस्वादन टेस्ट नाम में टेस्ट बढ़ता है। और जब नींद आता है, जिसका मतलब जड़, अगर वो दूर करना है तो उसको क्या करना है, अगेन हमसे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके संग में हमको जितना हो सके जप करना चाहिए। और वो जो महान वैष्णव हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते, वो लोग एक एक क्षण भी उसका उपयोग करते कृष्ण की भावना में। उनके संग में रहेगा तो हमको भी समय का मूल्य समझेगा, और धीरे धीरे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। और तीसरा, एक क्षण भी हमको ऐसा गंवाना नहीं चाहिए, ये एक प्रगतिशील वैष्णव का लक्षण है। एक क्षण भी अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी अगर बर्बाद हो गया तो बहुत बुरा लगता है, छे कृष्ण के विस्मरण में एक स्मरण एक क्षण चला गया। और जब कृष्ण देखते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कृष्ण कृपा देते हैं, जिसके द्वारा नाम के अंदर थोड़ा हमको टेस्ट या रस मिलने लगेगी। और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, मन इधर उधर भागता है, उसके लिए क्या करना है, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मन के ऊपर, मन को मतलब हरिनाम के नाम के ऊपर ध्यान देना, और दूसरे विचारों को दूर करना। दूसरा, वैष्णव आचार को पालन करना बहुत जरूरी है। वैष्णव आचार का पालन नहीं करने से धीरे धीरे अपराध भावना आ जाती है। और तीसरा, नियमों का पालन, एकादशी का व्रत, भगवान के आविर्भाव जो दिवस हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स, उनको अच्छी तरह से मनाना। जब मनाते हैं तो जो टेस्ट हमारा, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्यों होता है, क्यों मन इधर उधर भागता है, क्योंकि नाम में रस नहीं है और भौतिक रस ज्यादा है, इसीलिए वहां जहां रस है वहां भागता है मन। तो एकादशी का व्रत पालन करना, और भगवान के आविर्भाव अलग अलग जो दिवस हैं, पवित्र दिवस, उन दिनों में अच्छे तरह से उसका पालन करना, और ऐसे पवित्र दिनों में, एक तो है पवित्र दिन, दिन बड़ा पवित्र है, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, अलग अलग राधाष्टमी, एक तो दिन बड़ा पवित्र है। तो पवित्र दिनों में अगर पवित्र स्थान में जाना चाहिए, पवित्र स्थान मतलब अगर रामनवमी है तो अयोध्या जाओ, बोलेगा महाराज ऐसा कैसा, हर बार थोड़ी अयोध्या जा सकते हैं, चलो पवित्र स्थान मतलब मंदिर में तो आओ, जहां भक्त लोग एकत्रित हुए, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो पवित्र दिनों में पवित्र स्थान में जाना चाहिए, और पवित्र स्थान में जाकर क्या करना चाहिए, क्या सोना चाहिए, नहीं, पवित्र लोगों के साथ संग करना चाहिए, पवित्र लोग मतलब वैष्णव। और क्या सब मिलकर पिक्चर देखना चाहिए? नहीं, पवित्र लोगों के साथ आकर पवित्र नाम का और पवित्र कृष्ण कथा का गुणगान करना चाहिए, मग्न होकर, पूरा जान लगाकर। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में नाम के प्रति रस अगर धीरे धीरे चला जा रहा है, उसे जागृत करना है, तो पवित्र दिनों में पवित्र स्थान में आओ और पवित्र भक्तों के बीच पवित्र नाम का जप और पवित्र कृष्ण कथा का जप करो और बड़ी तीव्रता से अपना जान डालो और उत्साह के साथ करो, भले दूसरे उत्साह से नहीं हो, पूरा अपना उत्साह जान डालो। क्योंकि दिन बड़ा पवित्र है, स्थान बड़ा पवित्र है, लोग चारों ओर बड़े पवित्र लोग हैं और वातावरण भी पवित्र है, हरिनाम भी पवित्र है, सब पवित्र ज्यादा होने के कारण जो अपवित्र हृदय में है, जो भी है, वो धीरे धीरे चला जाएगा और पवित्र नाम के प्रति जो प्रेम है रस बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सारे व्रतों का पालन करना, ये फेस्टिवल जो है, बड़े बड़े उत्सव, उसको रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु में कहते हैं कि उत्सव को यथाशक्ति मनाना, अच्छी तरह से उत्साहपूर्वक मनाना, ये बहुत ही भक्ति के प्रकृति करने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। उसके बिना जो रस है, भक्ति का रस, नाम में रस, कथा में रस, वो नहीं मिलेगा, चला जाएगा, हमारा ढीले पड़ जाएंगे, हम अपराध हो जाएगा अगर यथाशक्ति नहीं मनाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। और डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप को दूर करने के लिए अपना जो जितना जप है सिर्फ करने के लिए करना नहीं चाहिए, कम से कम जितना भी नियम है हमारा 16 का, उसको अच्छे तरह से करने की कोशिश करना चाहिए और क्वालिटी पे जोर देना चाहिए, क्वांटिटी हो गया ऐसा नहीं, क्वालिटी पे भी जोर देना चाहिए। परफेक्ट उच्चारण होना चाहिए, मतलब आपको कैसा अच्छा लगता है, कुछ मतलब आप अगर कोई एक कैसेट लाए हो खरीद के सुनने के लिए और उसमें गाना ऐसा करके गाया, बोले कैसा कैसेट है, गाया तो ठीक से गाया ना, समझ में क्या बोल रहा है तो समझ में आए, तो भगवान भी बोलेंगे क्या कर रहा है, मेरा नाम बोल रहा है कि अपना खुद का नाम बोल रहा है। अरे प्रेम से आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसका नाम कैसे पुकारते हैं, छोड़ छोड़ के खुल खुला के एकदम फर्स्ट क्लास बुलाते हैं कि नहीं, जो भी नाम हो अब वो नहीं है, इसका मतलब प्रेम नहीं है, किसी तरह से खत्म करना, पवित्र अच्छा फर्स्ट क्लास उच्चारण करना चाहिए और स्पष्ट और सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। और सबसे अंत में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं पर अंत में भगवान से भीख मांगना चाहिए कि आपकी कृपा दो, आपकी कृपा के बिना ये आपके नाम में रस नहीं मिलने वाला मुझे, और मेरा भौतिक करोड़ों जन्मों से मैंने जो पाल पोस के बड़ा किया इस अनर्थ को, ये रस जो है भौतिक रस की ओर भागता है हमेशा, नाम लेते वक्त ही मेरे को फर्स्ट क्लास नींद आता है, दूसरे समय में तो जागृत रहता हूं मैं दूसरे रस का आस्वादन करते वक्त, पर नाम रस, तो इसीलिए प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। और तब उत्साह ही एकमात्र चीज है जो एक्चुअली सारे अनर्थों को नाश कर सकता है, और खास करके ध्यानपूर्वक जप न करना, जो प्रमाद है, प्रमाद को दूर करने के लिए उत्साह ही एकमात्र तरीका है, और बिना उत्साह के खत्म हो जाएगी बात। तो ये हो गया पहला उत्साह। इसके बाद निश्चया, देखेंगे जितना हो सके जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि कल लास्ट दिन है, और कल सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है 6 प्रकार के आदान प्रदान प्रेम का, वो तो अच्छा ऐसा तो शुभ और मतलब इस पे खत्म करना चाहिए प्रवचन के श्रृंखला को। तो देखेंगे कितना हो सके। निश्चयात, निश्चय का विरुद्ध है संशयात। उस व्यक्ति के हृदय में निश्चय नहीं है जिसके हृदय में संशय है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते गीता में, अज्ञश्च जो उसको ज्ञान नहीं है भक्ति का, अश्रद्धानश्च ज्ञान है भगवत गीता तो दोहराता है पूरा 700 श्लोक पूरा बोलता है सुबह उठकर, पर अश्रद्धानश्च, श्रद्धा नहीं है उसको, पर कुछ लोगों में श्रद्धा है, भगवान है इसका श्रद्धा है, पर संशय आत्मा, सचमुच में है क्या, बाई चांस नहीं है तो इतना समय बर्बाद हो गया, इतने साल से डेढ़ डेढ़ घंटा हर रोज, संशय आत्मा विनश्यति, मतलब आग भी लगा रहे हो पानी भी डाल रहे हो, न अयम लोकोस्ति न परो, इस लोक में और परलोक में न सुखम संशय, कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा संशय है, बाई चांस नहीं है तो हाल तो मैं इतना टाइम पास कर रहा हूं हरे कृष्ण कृष्ण कर पर रहा है पर संशय। तो उत्साह निश्चय, निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को कहा है कि तीन चीजों पे निश्चय रूप से जान लो। सारे वेदों में तीन ही तत्व ज्ञान बताया गया है, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कहे, पूरे वेदों में तीन ही चीज बताया गया है, बस भगवान कृष्ण है, हम उनके अंश है, ममैवांशो जीवलोके, और हमारा रिश्ता जो है प्रेममयी सेवा का है, भक्ति का है, और भक्ति करेंगे तो प्रेम जो है प्रयोजन, भक्ति संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इसके अलावा वेदों में और कुछ नहीं है, और कुछ जरूरत नहीं है, बस ये तीन जान गया तो सारे वेदों को पढ़ लिया आपने। हमको पूर्ण रूप से विश्वास होनी चाहिए ये तीन तत्वों के ऊपर, और इस विषय को जानने के लिए, ये विषय जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये 10 विषय प्रमुख विषय है, 10 मूल तत्व, ये तीन विषय जो है इसको समझना है तो 10 विषय को जानना बहुत जरूरी है। पहला विषय क्या है 10 मूल में, पहला मूल के मूल विषय क्या है, शास्त्र प्रमाण। हम जो भी कह रहे हैं परम सत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण, और वो शब्द प्रमाण तो शास्त्रों का प्रमाण, और शास्त्र भी बहुत सारे शास्त्र है बहुत लोगों के लिए, पर नहीं, आनाय, आनाय मतलब नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको, शास्त्र जो साधुओं के मार्ग से आया हुआ है, यानी महाजनो येन गतस्य पंथा, महाजनों ने उसका सार निकाला है, जैसा कल हमने चर्चा किया नियमाग्रह में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग विधि विधान बताई गई है, पर महान संतों ने सर्वोच्च जो योग्यता है उसके लिए विधि और निषेध क्या है, वो भक्ति का तत्व, इसको कहते हैं भक्ति शास्त्र। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं गीता भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु ईशोपनिषद उपदेशामृत, बस ये 5 पुस्तक पढ़ो काफी है तुम लोग भगवत धाम जाने के, और हजारों शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पुराण वो पुराण कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर ये चीज पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, क्योंकि भक्ति का शास्त्र है, इसका सार है ये सब, सर्वोच्च योग्यता के लिए विधि निषेध जो है वो दे दिया, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, चैतन्य महाप्रभु ने गसड़ गोस्वामियों को शिक्षा दे दी, सार बता दिया और बोले अभी जो मैंने बताया है शास्त्रों के आधार पर इसको विस्तृत रूप से लिखो, भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत इत्यादि जो पुस्तक है जो गोस्वामियों ने लिखा वो उसका सार है। तो 2 प्रकार के सत्य हैं, एक भौतिक सत्य, एक अपरा और दूसरा परासत्य, परासत्य मतलब आध्यात्मिक। भौतिक सत्य कोई भी बुद्धिमान आदमी सोचते सोचते उसको समझ में आ जाता है, पर आध्यात्मिक सत्य जो है अचिंत्या खलु ये भावा नताम तर्के न यूजे, जितना भी तर्क वितर्क करो, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, करोड़ों करोड़ों साल तक जितना भी बुद्धिमान है इतनी मुनि पंगवान हम सोचे फिर भी वो पहुंच नहीं पाएगा अचिंत्य तत्व। वो अचिंत्य तत्व को जानना है तो एक ही तरीका है, कैसे, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कोयला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जो जीव है जितना भी बुद्धिमान है उसके अंदर 4 दोष है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स करुण पाटव ईश्वर वाक्य नाही, यही सब दोष। ये 4 प्रकार की गलतियां हम सब में है, इसीलिए हम कभी भगवान को जान नहीं सकते अपनी बुद्धि से। तो इसीलिए माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, वो आप जान नहीं सकता कृष्ण कौन है क्या है। जीवेरे कृपाए कोई लग कृष्ण वेद पुराण, जीव पर कृपा करके व्यास देव के द्वारा वेद और पुराणों की रचना भगवान ने की है। और उस वेदों को भी जानना है, नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुण, ऐसे महान संतों के जो परंपरा में आए हुए महान भक्त हैं उनके पुस्तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और उनकी पुस्तक भी तब समझ में आएगी जब एक सदगुरु का आश्रय लेंगे। तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुषेयम उत्तमम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बिना सदगुरु के ऐसे शास्त्र भी समझ में नहीं आएंगे आपको, ये बहुत जरूरी है। तो जब परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त करते उसको कहते आमनाय, और जब वो पढ़ेंगे तो फिर बड़ी आसानी से हम समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया, मैं विस्तृत रूप से मैं नहीं जाऊंगा। एक गरीब आदमी था, उसके जीवन में उसके घर में एक सर्वज्ञ नाम के एक ज्योतिष आए, और सर्वज्ञ ने कहा अरे मूर्ख तू अपने आप को गरीब समझता है, तेरे पिताजी ने तो बहुत बड़ा धन तेरे लिए छोड़ के गया है। इसी तरह से हम सब गरीब हैं, जो कृष्ण को भगवान को नहीं जानता वो भाग्यवान नहीं है, दुर्भाग्यवान है। तो फिर सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो कहते हैं कि अरे मूर्ख तुझे नहीं मालूम तेरे पिताजी ने बहुत बड़ा धन रखा है तेरे लिए, पूरी दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं, तेरे घर के अंदर ही छिपा के रखा है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, अरे कहीं दूसरे की जरूरत नहीं, अंदर ही है ये। तो ये इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। भगवान वो बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संबंध धन रखा है, और इधर ही रखा है, कहीं दूसरा दुनिया ढूंढने की जरूरत नहीं, यही रखा हुआ है तुम्हारे घर के अंदर, इस शरीर के अंदर ही रखा हुआ है, हृदय के अंदर। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। पर अगर रखा है तो कैसा निकाले, उसको एक्सेस कैसा करे। तो सर्वज्ञ ने कहा दक्षिण में मत खोदो, दक्षिण में खोदोगे तो क्या बोलते हैं बीज मधुमक्खियां आएंगी काट के तुम्हारा हालत कर देगी, तुमको नहीं मिलेगा धन। पश्चिम में मत खोदो, एक भूत सवार हो जाएगा, तुम भूत जैसे बड़बड़ करोगे। उत्तर में मत खोदो, उत्तर में एक सांप आएगा तुम्हें निगल जाएगा। सिर्फ पूर्व की दिशा में थोड़ा सा मिट्टी निकालो और धन प्राप्त करोगे। इसी तरह से सदगुरु हमारे जीवन में जब आते हैं और कहते हैं कि सुनो भगवान का प्रेम जो है वो धन है, तुम्हारे हृदय में ही है, और वो हृदय से उसको प्राप्त करना है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, तो इसको कर्मकांड में मत फंसो, वो फंस जाओगे तुम। क्या बोलते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, चक्कर में फंस जाओगे, भी बार बार कटेगे ऐसा मालूम क्या काटेगी। पश्चिम में मत खोजो, ज्ञान कांड में मत फंस जाओ, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, भूत सवार जैसा हम भगवान में भगवान बोल के घूमते रहो। योग कांड में मत जाओ, योग कांड में फंस जाओगे तो परमात्मा का दर्शन भी होगा तो बोले मैं ही भगवान हूं, और उसमें लीन होने की कोशिश करोगे, अपना अस्तित्व को खो बैठोगे। बोले पूर्वी दिशा में खोदो, पूर्वी दिशा का मतलब है भक्ति में, नवदा भक्ति शुरू करो, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आचार्यों के संपर्क में जब आते हैं तो इस तरह से दश मूल के दस तत्व हैं। पहला है प्रमाण, प्रमाण मतलब शास्त्र, शास्त्र के आधार पर ही हम ये सब जान, दूसरा नौ तत्व जान सकते हैं। और दूसरा तत्व क्या है संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही आराधनीय भगवान है, उनके अलावा और कोई नहीं है, कृष्ण। तीसरा तत्व क्या है, परास्य शक्तिर विविधैव शूयते, भगवान कोई नपुंसक नहीं है, भगवान शक्तिमान है, परास्य शक्तिर विविधैव शूयते, अचिंत्य शक्ति वाले भगवान है वो। भगवान जो है कृष्ण जो है वो एक नपुंसक नहीं है, शक्तिहीन भगवान है, बेचारे कुछ नहीं कर रहे, सब संसार चल रहा है, वो कुछ नियंत्रण नहीं है, नहीं, पूर्ण शक्तिमान है वो, और तीसरा रसराज है वो, ये हो गया चौथा, मतलब प्रमाण शास्त्र कृष्ण ही भगवान है, आराधनीय है, सबसे आराधनीय भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है और रसराज है, और उनकी शक्ति से भौतिक और पूरा आध्यात्मिक संसार पागल हो जाएगा उनके प्रेम में, और अगर अचिंत्य वैरायटी को क्या बोलते हैं, विविधता, इस भौतिक संसार में विविधता इसीलिए है क्योंकि भगवान के धाम में विविधता है, और इस तरह से ये तीन सत्य हो गया, ये चार, पहला है प्रमाण और तीन सत्य भगवान के बारे में, फिर पांचवा सत्य है जीव जो है भगवान का नित्य अंश है, छठा सत्य क्या है, दो प्रकार के जीव हैं, नित्य मुक्त जीव जो भगवत धाम में हमेशा निवास करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, और नित्य बद्ध जीव जो भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं। सातवां सत्य ये है कि जो भगवान से विमुख हो जाते हैं वो कर्म भौतिक संसार में माया में आकर, बहिरंग शक्ति में आकर, माया कर्म और काल के चक्कर में फंसकर भ्रमण करते रहते हैं। और आठवां सत्य है कि कृष्ण इस सारे जीव और सारी सृष्टि से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये हो गया आठवां तत्व। ये आठवां तत्व, पहला आठ तत्व जो है इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, और इस रिश्ता को पुनर्स्थापित करना है तो भक्ति ही एकमात्र तरीका है, इसको ये नवा तत्व है। और दसवां तत्व क्या है, भक्ति करेंगे तो प्रयोजन क्या है, प्रेम प्रयोजन। बोले ये दस तत्व है, इस दस तत्व पे जिसको पूर्ण रूप से विश्वास है वही व्यक्ति उत्साहपूर्वक भक्ति में लग सकता है। जिसको भी इस दस तत्व के बारे में या तीन विषय के बारे में थोड़ा भी संशय है, शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र साधुओं में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति उत्साहपूर्वक भक्ति में नहीं लग सकता। भक्ति के योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे जिनको ये दस तत्व में विश्वास नहीं है, और जिसके हृदय में शंका है उसका हृदय दूषित हो जाएगा, हृदय दूषित हो जाएगा तो गलत इच्छाएं उत्पन्न होंगी, और गलत इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो किसी और दिशा की ओर चला जाएगा, और इस तरह से पूरा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, उनको उत्साह के साथ भगवान की भक्ति में चलना चाहिए। तो ये हुआ उत्साह निश्चयात्, फिर धैर्यात्। धीरज दो प्रकार के होते हैं, धीरस तत्रण मुह्यति। धैर्य मतलब जैसा हमने पहला श्लोक में चर्चा किया, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीर। जिसने ये छह प्रकार के जो वेग हैं इसको नियंत्रण में किया, जो हमारे शरीर को अमंगलमय दिशा की ओर ले जा रहा है उसको नियंत्रण कर सकता है, उसको कहते हैं धैर्यवान या धीर। धीरस तत्र न मुह्यति, किसको, कौन मोहित नहीं होता है, जो समझ जाता है कि देहिनोऽस्मि यथा देह कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो शरीर को बदल रहा हूं। तो शरीर के अंदर ये तीन गुण हैं, और तीन गुणों में खास रजोगुण से तमोगुण के कारण ये सारे वेग उत्पन्न हो रहे हैं, पर इन वेगों को सहन करना चाहिए। जब तक ये शरीर है ये छह वेग आएंगे, वाचो वेगम मन वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, ये रहेंगे जब तक ये शरीर है, मृत्यु के दम तक ये वेग रहेंगे ही, पर हमको सहन करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में पांचवें अध्याय में, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। शक्नोति हैव, जो सहन करना चाहिए, उसको धीरज चाहिए उसको व्यक्ति को। शक्नोति है वह सोढ़ुम, जो मतलब शरीर सहन कर सकता है। क्या, कब तक सहन करना? प्राक शरीर विमोक्षणा, जब तक ये आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती ना, तब तक हमको ये सब सहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस 4 साल कर लिया, अभी तो शुद्ध भक्त बन गया, अभी कुछ भी कर सकते, नहीं। जब तक भौतिक शरीर है, 3 गुणों से बना हुआ, वेग आएंगे। और ये वेग कहां से उत्पन्न हो रहे? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण और तमोगुण से आ रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके सत्वगुण में रहने की कोशिश करना चाहिए। उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण दीक्षा हो गया, अभी ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं। ब्राह्मण दीक्षा का मतलब है हमारे जीवन को, हमारे विचार को, हमारे खान पान, हमारे वातावरण को हमेशा सत्वगुण में रखने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि सत्वगुण में रखेंगे तो रजो और तमोगुण नहीं आएगा, और रजो और तमोगुण नहीं आएगा तो काम क्रोध का जो शक्ति है वो इतना जोर से नहीं आएगा कि हम लाचार हो जाएंगे। अथ केन प्रयुक्त होयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न पिवार्षणीय बलादिवनीय। बलपूर्वक क्यों घिसे जाते हैं? क्योंकि हमने रजोगुण और तमोगुण को खा पी के, उसके विचार, उसके विचारों को, उसके खान पान को बड़ा के पाल, उसकी इतना बड़ा कर दिया है ना, इतना ताकतवान हो गए हैं, अभी वो गाली देते तो हम लोग चुपचाप सुनना पड़ता है। पर उनको भूखे रखो, जितना ये दो क्या बोलते हैं रजोगुण और तमोगुण को भूखे रखोगे, उतना धीरे धीरे वो पतले हो जाएंगे। पतले हो जाएंगे बोले चुप बैठो, बैठना पड़ेगा उनको। पर अगर उनको खा पी के अगर मोटा बना दिया तो सत्वगुण को बोलेगा चुप, मेरे को भी काम वासना, मेरे को क्रोध है, समझा, मैं करूंगा, ठीक है प्रभु, सुनना पड़ेगा सत्वगुण को। पर अगर सत्वगुण को आप खा पी इसके हमेशा उसको खिला पिला के बड़ा करोगे और इन दोनों को सुखा के रखोगे तो सत्वगुण बोलेगा चुप, हमको बकरी करना है, समझा, ठीक है प्रभु। और सत्वगुण से निर्गुणता, निर्गुणता मतलब भक्ति, भक्ति में जाना बड़ा आसान है। बिना सत्वगुण में आए भक्ति में जाना बहुत मुश्किल है। मालूम है सब अच्छा है, क्या क्या करना है, हो नहीं पाता है। ऐसे विचार ऐसे कुछ आते हैं जिसके इसमें पढ़कर हम लोग फिर से वापस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसीलिए और ये थक जाता है आदमी, कोशिश करता है थक जाता है। कभी कभी धीरज का, धैर्य का दूसरा मतलब है पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य ना, सहनशीलता। हाँ, पेशेंस का मतलब है सहनशीलता। अरे सॉरी, धीरज का दूसरा मतलब, धैर्य का दूसरा मतलब है सहनशीलता। हमको रेस्टलेस, मन चंचल पड़ा है जो रजोगुण में और तमोगुण में रहता है, तो हमको बोलते हैं देखा इतना साल से भक्ति किया, कुछ हुआ क्या? काम वासना भी नहीं गया, क्रोध भी नहीं गया, फालतू में वो मजा भी नहीं किया, और इधर भी कुछ नहीं मिला तेरे को। तो संशय होने लगता है, क्या मैं सही मार्ग पे हूं, क्या टाइम पास कर रहा हूं मैं, बर्बाद कर रहा हूं अपना जीवन। पर जिसको निश्चय है और उत्साहपूर्वक चलता रहेगा, उत्साहपूर्वक चल रहा है, 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, क्या भाई गाड़ी चला रहा है पर पहुंच नहीं रहा हूं, पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं कि नहीं, धैर्य, धीरज रखो, सही मार्ग पे हो ना। चैतन्य महाप्रभु और मुकुंद की कहानी है। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में मुकुंद को बोले, ए मूर्ख को 1 करोड़ जन्मों तक मैं इसको देखूंगा नहीं। 1 करोड़ जन्म? और जब मुकुंद को पता चला, नाचने लगा, बस 1 ही करोड़ जन्म, हरि बोल हरि बोल, नाच रहा है। लोग बोले क्या पागल हो गया, 1 करोड़ जन्म तक भगवान नहीं देखने वाले तेरे को? बोले बस, अरे चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए सिर्फ 1 ही करोड़ जन्म, ऐसा चला जाएगा। कितना धीरज है उसके अंदर, कितना सहनशीलता। अरे 1 करोड़, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ जन्म कुछ भी नहीं। और हम लोग 10 साल करने को, 10 साल किया, अभी तक तो आ जाना चाहिए कृष्ण, आल्टर से उतर के गले लगाना चाहिए, मेरे प्रभु 10 साल तक तुमने किया, शाबाश बेटा, और नहीं आए पता नहीं प्रभुपाद जी ठीक बोला है कि नहीं, बीबीटी ने पब्लिशिंग में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक किया था लगता है, 10 साल से श्रवणम कीर्तनम कर रहा, कुछ हो नहीं रहा, हम रेस्टलेस हो जाते, हम चंचल हो जाते, ये रजो और तमोगुण का प्रभाव है। पर सहनशीलता, धीरज रखना, बस आज नहीं तो करोड़ जन्मों के साथ सही, पर मैं चलता ही रहूंगा प्रभु, मैं आपकी क्या है वो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमा अदर्शनान मर्महताम यथा तथा वाविद, तो लात मारो, अवहेलना करो करोड़ों जन्मों तक, कुछ भी करो, मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। फिर से मैं पूछ ला के आप ही के कदम, आपके के चरण कमलों के पास आना, ये धीरज, ये धैर्य, टॉलरेट। और जो व्यक्ति ये सहनशील करने के लिए तैयार है वो ऑलरेडी मुक्तात्मा है। यम मीनव्यत यंत्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीर समदुःख सुखम धीरम, वो धीरज आदमी धैर्यवान है, सह अमृतत्वाय कल्पते, वो तैयार है, ऑलरेडी मुक्तात्मा है वो, भले 10 करोड़ साल के बाद उसको मुक्ति मिले या आज उसको मुक्ति मिले, उसको कुछ फर्क नहीं है, उसको बोले मैं उत्साहपूर्वक पूरा निश्चय हूं, मैं सही मार्ग पे हूं, भगवान की भक्ति काफी है मेरे लिए, भगवान चाहे करोड़ जन्मों के बाद आए या आज कल सामने आके खड़े हो जाए, पर मुझे उनकी भक्ति में लगे रहना है, बस यही एक मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं मेरे लिए। वो एक्चुअली मुक्त आत्मा है। तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम विपाक हरिद्वाग वपुर भेर विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव। जिसको मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में भगवान की कृपा से ही हो रहा है, तो हृदवाग वपुर भेर, हृदय से, वाणी से और शरीर से धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बस ऐसे रखे रहो आपके चरणों में, ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त आत्मा है। ये हो गया धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, ये सबसे प्रमुख चीज है तीन। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक स्त्री अगर एक पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसको धीरज रखना चाहिए ना, नहीं आज कल शादी हो गया आज ही बच्चा चाहिए मेरे को, अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक तरीका है उसका भी, सब नैसर्गिक तरीका है, वो सेवा करो प्रेम से, शरण जाओ, बाद में 9 महीने के बाद होगा, 9 महीने थोड़ी होता है, 9 सेकेंड के अंदर चाहिए, ऐसा नहीं होता, उत्साह पूर्वक और निश्चय पूर्वक। हाँ अगर इफ द मैन इज पोटेंट एंड द वुमन इज फर्टाइल, इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड द बेबी इज बॉर्न। इसी तरह से इफ द गुरु इज पोटेंट विथ एनर्जी, द पोटेंट विथ नॉलेज, एंड इफ द डिसाइपल इज फर्टाइल, मतलब रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, देन भक्ति विल मैनिफेस्ट इन द हार्ट वेरी सून, बहुत जल्दी भक्ति हृदय में प्रकट हो जाएगी। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है नवदा भक्ति बताई गई, अफकोर्स प्रभुपाद जी ने उसको एकदम सरल कर दिया है, सारे विधियों का सार है 16 माला जप, और सारे निषेध का सार है 4 नियमों का पालन करो, बस 4 चीज छोड़ो और 4 चीज जोड़ो। 4 चीज छोड़ो, क्या छोड़ना, मांसाहार नशा जुआ व्यभिचार, और 4 चीज जोड़ो, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स शास्त्रों का अध्ययन, सी चैंटिंग द होली नेम, मंत्र का जप, और डी यानी प्रसाद सेवन, डाइट। बस डाइट से शरीर शुद्ध रहेगा, प्रसाद खाएंगे तो हमेशा शरीर शुद्ध रहेगा, ABCD, D के बाद सी चैंटिंग, चैंटिंग हमेशा मन, मनस्त्रायते त्रिमंत्र, मन शुद्ध रहेगा, और शास्त्रों का बी यानी बुक्स, शास्त्रों का अध्ययन करते तो बुद्धि शुद्ध रहेगा, और ए यानी एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहे तो आत्मा शुद्ध रहेगा, अहंकार नहीं होगा, न तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना। तो अगर हमारा शरीर शुद्ध है प्रसाद के द्वारा, मन शुद्ध है जप के द्वारा, बुद्धि शुद्ध है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, और अहंकार नष्ट हो जाता है भक्तों के चरण में नम्रता पूर्वक सेवा करते द्वारा, तो शुद्ध रहेंगे और फिर से वापस वो चार नियमों को तोड़े बिना पवित्र चलते रहेंगे। तो भगवत धाम तो यही तत्त कर्म प्रवर्तन। ऑफकोर्स उसको प्रहलाद महाराज ने नौ प्रकार से बताया, नौ प्रकार की भक्ति, और उसी नौ भक्ति को विस्तृत रूप से बड़ी कृपा पूर्वक उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने 64 अलग अलग ये बताए, क्रिया बताए, और वो 64 चीज भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने विस्तृत किया है। 64 आइटम को अच्छी तरह से जितना हो सके पालन करना चाहिए। एक बार हम लोग ब्रह्मचारी क्लास में उसका अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि प्रभुपाद का दिया हुआ मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह मंगल आरती से लेकर भागवतम क्लास तक और उसके बाद प्रसाद, सुबह के कार्यक्रम में 64 में 45 से ज्यादा आइटम आ जाता है पूरा भक्ति के। और इसलिए हमने देखा है जो मंदिर में रेगुलरली जाते हो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं कई हद तक ज्यादा प्रगति करते हैं। हमारी इच्छा है जल्दी जल्दी अच्छा मंदिर हो जाए ताकि कोल्हापुर के सारे भक्त लोग पूरे के पूरे हर रोज आके श्री विग्रह की सेवा, दर्शन, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, भागवतम क्लास, अच्छा है फर्स्ट क्लास, भक्ति में प्रगति करना आसान है। तत्त कर्म प्रवर्तना तो इनको अच्छे तरह से अध्ययन करके जितना हो सके उतने अंग रेगुलरली अगर हम लोग जीवन में उतारे तो बहुत अच्छा है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर संग त्यागात, हाँ बोलिए अरे संग त्याग तो जनसंग पहले ही बोल दिया आपने, फिर अभी भी संग त्यागात बोल रहे हैं। ये संग का दो मतलब हुआ, प्रगति करना है तो संग को त्यागना चाहिए। कैसा संग? ये संग का दो मतलब हुआ, एक एसोसिएशन और दूसरा है अटैचमेंट। दो संघ का दो मतलब है, एक है संघ मतलब एसोसिएशन, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, अभक्तों का संघ जिसका हमने कल चर्चा किया, अलग अलग प्रकार के अभक्त हुए उनका और स्त्री संगी और इत्यादि, उनको त्यागना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके संघ में हम भक्ति नष्ट हो जाता है। और दूसरा संघ का मतलब है आसक्ति। किस चीज से आसक्ति? वो आसक्ति भी दो प्रकार की होती है, towards prejudices and towards assets. prejudices मतलब हमारे विचारधारा, पिछले जन्मों से आए हुए विचारधारा या इस जन्म में उत्पन्न छोटे उम्र से हमारे उत्पन्न हुए विचारधारा। ये विचारधारा नहीं जाती है कभी कभी, कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत कर्मकांडी हो जाते वो लोग, रिचुअल्स में फंस जाते वो लोग, पहले जन्म से उनका स्वाभाविक है वो बहुत कर्मकांडी हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से ज्ञानी 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 शुष्क ज्ञान में ज्यादा अटक जाते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है पहले से, और उनको भक्ति में आना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ लोग हो है जिनको इस जन्म में किसी कारणवश बुरे संग या कुछ वातावरण में बढ़ने के कारण उनके हृदय में एक तीव्र मन में एक प्रकार का प्रिजुडिस, क्या बोला प्रिजुडिस का भी मैंने मतलब विचारधारा आ जाती है एक प्रकार का, किस एक जात से द्वेष या इससे द्वेष, इन चीजों से द्वेष, ऐसा वो जाएगा नहीं। वो खास करके हमारे एक सिंध के भक्त हैं, सिंधी भक्त हैं, भक्त नहीं है मतलब भक्त बन रहे हो पंजाब से आए हो, उनके पिताजी पाकिस्तान में थे और हिंदू मुस्लिम का जो ये हो गया झगड़ा हो गया 1900 जब पार्टीशन के दौरान, उस समय उनको भाग के आना पड़ा और इसके कारण वो आज मुसलमानों से इतना द्वेष करते हैं, वो इतना द्वेष करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बोला बेटा दो ही मुसलमान लोग अच्छे होते हैं। बोले कौन? जो जो माँ के गर्भ में है और जो जमीन के अंदर है। सही में उन्होंने मेरे को बताया, मतलब इतना घृणा है वो सोच ही नहीं सकता, मतलब वो उसको देखा तो बोला है बस ये तो ऐसे ही, सबके सब ऐसे ही। अब वो सोच ही नहीं सकता, उसको अभी कृष्ण भावना में बोला ईरान में चार भक्त बने, क्या भक्त बने, कोई नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता कि कृष्ण भावना इन सब से परे है। ऑफ कोर्स हम लोग उस स्थिति से गुजरे नहीं है तो हमको लगता है कि क्या मूर्खता है, पर जो उस स्थिति से गुजरा ऐसा मतलब विचारधारा ऐसे डीप रूटेड उनके हृदय में आ गई है कि वो छोड़ ही नहीं सकता। पिछले जन्म का कभी कभी होता है या इस जन्म में आया हुआ किसी किसी परिस्थिति के कारण, सब ऐसे ही लोग हैं, ये सब पुरुष लोग ऐसे ही हैं, ये सब स्त्रियां ऐसे ही हैं, ये सब नीच जाति के लोग ऐसे ही, ये सब ब्राह्मण ऐसे ही हैं, कोई भी हो कुछ भी हो, ये विचारधाराएं नहीं निकलेगी। और इन चीज से आसक्ति जो है वो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा हो जाती है आदमी को प्रगति करने में। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है वैष्णव वैष्णव सब ठीक है, भगवत गीता सब ठीक है, पर ये चीज इसमें गलत है वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे लोग वैष्णव बन ही नहीं सकते, कभी कभी तथाकथित ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं कर सकते, अरे ऐसा लोग लेच्छ लोग या कैसा बन सकते वो लोग वैष्णव, वैष्णव थोड़ी होता है। करोड़ जन्मों का पुण्य करो तब जाके ब्राह्मण जन्म में पैदा होगे तब वैष्णव बनोगे। तो कर्म कांड के विचार पिछले जन्मों से आए हुए, ज्ञान कांड के विचार पिछले जन्मों से आए हुए, या इस जन्मों में किसी वातावरण में रहकर किसी अनुभव किए हुए कारण कुछ है, तो ये भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा हो जाती है भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। और इसका संग कैसा जाएगा, इसका प्रभाव कैसा जाएगा, बोले शुद्ध भक्तों के एक क्षण के संग से ये सारा सब चला जाएगा, शुद्ध भक्तों के एक क्षण के संग से। उदाहरण के लिए मृगारी, पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण नीच योनि में पैदा हुआ था, तो मांस वास खाता था, वो पशुओं को मारता था, पर नारद मुनि के एक क्षण के संग से वही मृगारी एक महान वैष्णव बन गया। रत्नाकर डाकू, नारद मुनि की एक क्षण के संग से वाल्मीकि बन गया। मांस खाने हुए, जन्म से मांस खाने हुए, सब कुछ करने वाले प्रभुपाद जी के कुछ क्षणों के संग से कितने लोगों आज इतने महान वैष्णव है कि पूरे तथाकथित ब्राह्मण लोगों के देशों में आकर उनको भी उद्धार कर रहे हैं। और उनके संग से हमारे सारे ये जो विचारधाराएं हैं डीप रूटेड पिछले जन्मों का या कर्मकांडी, जैसे ब्राह्मण बन जाके हम लोग रह जाते हैं और हमेशा किसी का किसी में दोष निकालते रहते हैं, या नहीं नहीं शुद्ध रहिए ऐसा ऐसा है, या इस जन्म में प्राप्त किए हुए विचारधारा, इसको नाश करने के लिए एक ही तरीका है, शुद्ध भक्तों का संग। तीव्रता से भक्ति करेंगे तो ये सब विचारधारा, नहीं तो ये विचारधाराएं जो है बहुत बड़ी बाधाएं आकर खड़ी हो जाएगी भगवान की भक्ति में प्रगति होने में मदद। इसीलिए संग त्यागात, इसको त्यागना ही पड़ेगा। और दूसरा आसक्ति है चीजों के प्रति। कोई आदमी है, एक बंगाली ने मुझे को बोला, प्रभु जी मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं पर मच्छी नहीं छोड़ सकता। बोले सब नियम का पालन करूंगा, 16 नहीं 64 माला करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, जुआ नहीं करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर मछली नहीं छोड़ सकता। प्राण जाए पर कुछ लोगों का ऐसा होता है, भाई सब कुछ करूंगा पर ये एक छोड़ नहीं सकता। चीजों से आ सकती या किसी वस्तुओं से आ सकती, भौतिक चीजों से, एक तो है विचारधाराओं से आ सकती और दूसरा है चीजों से आ सकती। कुछ खाने की चीज हो या कुछ पहनने की चीज हो या कुछ भी चीज हो, कुछ चीजों से आ सकती, घर से आ सकती, स्त्री से आ सकती, उससे आ सकती, कुछ तो आ सकती, वो बहुत बड़ी बाधा बन के रह जाती है। वो आसक्ति कैसे दूर किया जाए, अगेन सेम प्रिंसिपल, दो चीज, एक भक्तों के संग में। रामानुजाचार्य कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा, तकलीफ जा ही नहीं रहा है, तो एक काम करो, जहां भी भक्त लोग एकत्रित हुए उनके संग में आके बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, सिर्फ बैठ रहो बस। उनके संग में आकर सुनो, देखो, रहो, धीरे धीरे सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। और दूसरे कहते हैं कि भक्ति के जो व्रत हैं उन व्रतों का पालन करो, एकादशी का पालन करो, कार्तिक मास का पालन करो, चतुर्मास का पालन करो, पहले एकादशी में कम से कम एक दिन के लिए वो इच्छा खाने की चली जाएगी, कार्तिक मास में एक महीने के लिए चली जाएगी, चतुर्मास में चार महीने के लिए चली जाएगी, और चार मास छोड़ दिया तो भी पूरे दिन भर मतलब साल भर ही छोड़ ही दो उसको। धीरे 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 वैष्णव के संग में आने से और भक्ति के जो नियम है, व्रत है, तप है इत्यादि, उन व्रतों का पालन करने से धीरे धीरे सारे जो भौतिक चीजों से हमारी बहुत जन्मों की आसक्ति है धीरे धीरे चली जाएगी, संगति आगात, और अंत में सतोवृत्ते है। सतोवृत्ते मतलब साधु वृत्ति। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दो प्रकार के साधु हुए, एक गृहस्थ साधु और एक वैरागी साधु। महाजनो ये नगत सपंथा, हमें अगर मंगलमय मार्ग पे चलना है महाजनों के चरण चिन्हों में करना चलना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के महाजन हैं, एक पुराने महाजन और दूसरे नए महाजन। बोलिए क्या भाई, पुराने महाजन नए महाजन? पुराने महाजन मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले जितने सारे महाजन हुए, द्वादश महाजन इत्यादि, ये पुराने महाजन। और नए महाजन मतलब चैतन्य महाप्रभु के बाद आए हुए जितने सारे षट गोस्वामी और इतने सारे उनके भक्त महाजन, ये जो है नए महाजन। और जब खास करके नए महाजनों का हम चरण चिन्हों पे चलेंगे वो ज्यादा मंगलकारी है, ज्यादा मंगलकारी है। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी आए हैं। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में हम जब देखते हैं तो हम लोग इमीडिएटली रिलेट कर सकते हैं। अब बोलेंगे प्रहलाद महाराज, अरे वो तो हजारों साल रहते थे, वो तो ऐसे थे, वो ऐसा थे, आज हम लोग कहां करेंगे महाराज, कहां प्रहलाद महाराज और हम। पर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के बारे में सुनते हैं, उन लोग तो हमें लोग जैसे से 500 साल पहले बंगाल से चलते चलते आते थे, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा गृहस्थ वैष्णवों के प्रति, वैरागियों के प्रति और भक्तों के प्रति, कुछ गृहस्थों के लिए उन्होंने नियम दिया है, वो नियम बहुत मंगलमय है, उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। कुछ वैरागियों के लिए नियम दिया है, उनको पढ़िए, ध्यान से समझिए और उतारिए। और तीसरा, भले गृहस्थ हो वैष्णव वैरागी हो, भक्तों के लिए कुछ नियम दिया है, अगर वो नियम पालन करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक तीन तीन चार चार उदाहरण देके मैं खत्म करना चाहता हूं आज का। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, आप अगर चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थों के बारे में क्या कहा है, क्या शिक्षा दी अपने उदाहरण से या दूसरों के जीवन में बोलते हुए, वैरागियों को क्या उदाहरण दिया और जनरली साधारण भक्तों को क्या उदाहरण दिया। मैं चार चार पांच पांच में पढ़ूंगा। उदाहरण के लिए गृहस्थों को कहा, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं चैतन्य चरण आदिलीला 15वें अध्याय के 26 और 27वें श्लोक, गृहस्थ होइला माए में चाही गृह धर्म, गृहिणी बिना गृह धर्म नाए होए शोभन। क्योंकि मैं अभी घर में हूं तो मेरा कर्तव्य है गृहस्थ बनना, अरे बिना पत्नी के गृहस्थ जीवन का कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब गृहस्थ होना है तो पत्नी को स्वीकार करना है, घर में है पर पत्नी नहीं है, वो ऐसा कैसा गृहस्थ हो, ब्रह्मस्थ ब्रह्मचारी जो ग्रह में रहता है ना, घर उधर भी नहीं उधर भी नहीं, प्रगति करना है तो कुछ तो जिम्मेदारी लेना है। हमको ब्रह्मचारी का जीवन जीना है पर ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं जीना है, गृहस्थ का उनका फैसिलिटी भी देना है और इनका फैसिलिटी भी भोग करना है, जिम्मेदारी कहीं का नहीं लेना है और दोनों का फैसिलिटी लेना है, तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचारी आश्रम में बड़ा जिम्मेदारी नहीं है पत्नी के साथ रहने का, पर दूसरा जिम्मेदारी है स्वतंत्रता नहीं है, उठो ए टाइम पे उठो, खाओ खाओ, नहीं खाओ आज उपवास है 12 बजे तक, ठीक है कुछ भी भूख लगे क्या करे, आश्रम में कुछ बनने नहीं वाला। तो वहां जिम्मेदारी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा ऐसा बोझा नहीं है, कमाना है पत्नी को देखना है, उनके साथ रहना है, बच्चों को देखभाल करना है, उनका साफ आप करना है, उतना ही तकलीफ ही नहीं है उसका, पर स्वतंत्रता नहीं है। अगर इस जीवन में थोड़ा स्वतंत्रता है, जब चाहे जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे सो सकते, जब चाहे उठ सकते, थोड़ा छूट है, पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है, इतना छूट के लिए इतना बड़ा समस्या। तो दोनों, हर एक आश्रम में थोड़ा छूट है और थोड़ा जिम्मेदारी है। हमको दोनों आश्रम का छूट चाहिए पर दोनों आश्रम का जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जिम्मेदारी के बिना हम प्रगति नहीं करेंगे। परु बोले परिवार अनेक तुमार, निरवह के मते तबे होई बे सवार, गृहस्थ है ना इहो चाहे संचय, संचय ना कोयले कुटुंब भरण ना ही है। भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे तुम्हारे परिवार में इतने सदस्य हैं, तुम लोग इनका कैसे संभालोगे? तुम गृहस्थ हुए हो तो थोड़ा बहुत तो संचय करना चाहिए धन, क्योंकि संचय नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को ठीक ठाक रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑफकोर्स अत्याहार भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हाँ, गृहस्थ एरो महाप्रभु शिखाए न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थ गृहस्थर मूल कर्म, अकैतवे चित्त सुखे यार ये न शक्ति, तहा करिले बोली अतिथि रे भक्ति। इस तरह से भगवान ने, जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे, उन्होंने उनके घर में जितने अतिथि आए थे सबको तृप्त किया और पूरे दुनिया को सिखाया कि एक आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य क्या है। गृहस्थ का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अतिथियों की सेवा करना। अगर एक गृहस्थ बड़े खुशी के साथ अपने अतिथियों की सेवा करता है बिना डुप्लीसिटी, बिना दाम्भिकता के और यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, तो वो बहुत ही हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल को क्या बोलते, बहुत मतलब अतिथि का अच्छा सेवा करने वाला, हाँ हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं ना गृहस्थ, मतलब अतिथियों का, जैसे कहना आतिथ्य का धर्म का सही तरह से पालन किया। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थों को अपने उदाहरण के द्वारा, जब वो गृहस्थ जीवन में थे और अपने उदाहरण के द्वारा जब वो संन्यास जीवन में थे, खुद अपने जीवन से या अपने अनुयायियों को शिक्षण देते हुए बहुत सारे ऐसे नियम बताए। फिर वैरागी को भी बहुत सारे नियम बताए। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाईबे करे जीवन रक्षण। जो वैरागी जीवन जी रहा है उसको हमेशा हरिनाम लेते रहना चाहिए और भीख में जो मिला उसी में खाकर तृप्त रहना चाहिए। वैरागी होइया जेबे करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। अगर एक वैरागी अगर दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए उसको। अगर दूसरों के ऊपर निर्भर होता है तो अपनी जीवन में यशस्वी नहीं रहेगा और दूसरों के ऊपर निर्भर होने के कारण कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देंगे। हमेशा कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए एक वैरागी को। वैरागी हना करे जीवार लालस, परमार्थ जाय आर होय रसेर्वश। अगर एक वैरागी अपने जिह्वा की तृप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के उसको चीज चाहिए तो उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जिह्वा की जो रस है उस रस में वो फंस जाएगा। इस तरह से वैरागियों को बहुत चीज सिखाए, उनका धर्म सिखाया और गृहस्थों को सिखाया, और बाद में भक्तों के लिए, चाहे वो वैरागी हो, सबके लिए कुछ जो है वो समान है। और वो क्या है, उदाहरण के लिए कहते हैं, हाँ, कृष्ण मंत्र होइते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण र चरण। सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम लेने से एक व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है, यहां तक कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपने से भगवान के चरण कमल का कोई दर्शन कर सकता है। नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कलियुग में कोई भी धर्म हरि नाम से बढ़कर नहीं है, जो सारे वेदों का शास्त्र है और यही तारे शास्त्रों का तात्पर्य। इस तरह से कुछ चीजें जो हरेक वैष्णव के लिए लागू है, जो भी अपने आप को वैष्णव समझता है, तो वैसा भी लिखा है, गृहस्थों के लिए लिखा है, वैराग्यों के लिखा है। इस तरह से ऐसे लोगों का आदर्श जीवनी पढ़ना या श्री चैतन्य चरितामृत खास करके या चैतन्य भागवत में भगवान ने अपने उदाहरण से या अपने अनुयायियों को जो शिक्षा दी है उसका अध्ययन करके उसको अगर बड़ी सख्तता से अपने जीवन में पालन करेंगे तो बड़ा मंगलमय अपना जीवन जो है बड़े मंगलमय तरीके से सफलता की ओर बढ़ सकता है। तो इस तरह से उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति ही प्रसिद्ध। और कल हम चर्चा करेंगे, कल अंतिम दिन है, कल हम चर्चा करेंगे कि ये छह चीजों को नहीं करना जो भक्ति का विनाश कर देता है, और छह चीजों को करना जो भक्ति को प्रगति करता है। ये सिर्फ भक्तों के संग में होगा। छय मेघो दमी छय दोष सोजी छय गुण देहो दास छय सत संग देहो या हमारे बोसेची संगेर आशे एकाकी अमार नाई पाए बोल हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दियो देहो कृष्ण नाम धन। तो ये सब अगर करना है तो भक्तों के संग में करना है, और भक्तों के संग में रहना है करना है तो भक्तों के संग में रहना है, और भक्तों के संग में रहा तो थोड़ी समस्या होने वाली है। इसीलिए भक्तों के साथ कैसा रहना है अगला श्लोक बतलाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम पूर्वक रहना। एक बार हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी आए थे और उन्होंने वैष्णव अपराध के ऊपर लेक्चर दिया। अरे इतना स्ट्रांग लेक्चर दिया, सब हिल गए। और बाद में एक लड़का डगमगाते हुए हिला, डरते हुए बोला, महाराज एक प्रश्न पूछूं क्या? बोला, हाँ, ऐसा लगता है कि वैष्णव के संग में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वैष्णव के संग में रहे नहीं तो अपराध ही नहीं होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भक्ति करना है तो भक्तों के संग में, मर गए। भक्ति करना है तो भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में रहा तो अपराध ही अपराध का डर हमेशा। तो फिर उसे उन्होंने बताया कि नहीं, भक्ति तो भक्तों के संग में करना है, और भक्तों के संग में कैसा रहना है उसका भी एक तरीका है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने पहले से बता के रखा है छह प्रकार के आदान प्रदान कैसे होना चाहिए ताकि बड़ा प्रेममय रिश्ता बनी रहे। और ये छह प्रकार का आदान प्रदान किस स्तर के लोगों के साथ कितने हद तक करना चाहिए वो अगले श्लोक में बताएं। एक ही प्रकार से छह आदान प्रदान अलग स्तर के, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, अलग अलग लोगों के साथ यही छह रिश्ते अलग अलग स्तर पर होना चाहिए, पर होना चाहिए। तो ये कल हम चर्चा करेंगे, ये छह प्रकार का प्रीति लक्षणम, प्रीतिपूर्वक अगर भक्तों के साथ रहना है तो ये छह जो आदान प्रदान है कैसा करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, निताय गौर विमान, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा, कल सुबह भागवतम क्लास नहीं है, चैतन्य चरितामृत क्लास नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण हमारा मीटिंग है। तो कल आज अगर कोई आने वाला है कल और नहीं आया यहाँ आज, तो कृपया उनको भी बता दीजिए ताकि इतना दूर आके वापस नहीं जाए। कल डायरेक्टली शाम को कार्यक्रम होगा 6:30 बजे, और कल सुबह 8 से 9 का जो क्लास होता था वो कल नहीं रहेगा। हरे कृष्ण।